ओके, आज का हमारा टॉपिक है आयतुल कुर्सी। ये सूरह बकरा की आयत नंबर 255 है, चैप्टर 2 है, उसकी आयत है 255। इसकी बहुत तारीफ़ है और इसको उसका एक टाइटल है या उसके उसकी जिस तरह से डिफ़ाइन किया गया है वो है आज़मुल आयात, आयात में सबसे बड़ी। आज़म, अज़ीम कहते हैं बड़े को, अगर आप कहेंगे आज़म यानी सबसे बड़ा, तो आयात में सबसे बड़ी। तो हमें मालूम है कि कुरान में 6,666 आयतें हैं, तो आयतुल कुर्सी वो आयत है जो आयात में सबसे बड़ी है। इसका इसका टाइटल है आज़मुल आयात, आयात में सबसे बड़ी। और इसको पढ़ने के बहुत सारे फ़ायदे बताए गए हैं। कहते हैं ये आयत जो है वो घर से निकलते वक्त पढ़ने की तलकीन की गई है, इसके पढ़ने से हिफाजत होती है। इसकी मतलब चूँकि इसको आयात में सबसे अजीम आयत कहा गया है, तो इसमें इसकी बहुत बड़ी तारीफ आ गई है, और फिर आपको बहुत सारी उसकी फजीलत मिलेगी कि इसको पढ़ने का कितना फ़ायदा है। ज़ाहिरी तफासीर में भी कहते हैं कि इसको पढ़ने की सबसे बड़ी फजीलत ये है कि इसके अंदर इसमें आज़म छुपा हुआ है। खुद रसूल सल्लम ने फरमाया कि इसको पढ़ने का फ़ायदा इसलिए है कि इसके अंदर इसमें आज़म छुपा हुआ है। कुरान में तीन सूरतों में अल्हय्युल क़य्यूम का लफ्ज़ आया है, और इन तीनों सूरतों के लिए रसूल ने फरमाया है कि इन सूरतों के अंदर इसमें आज़म छुपा हुआ है। अब इसका बैकग्राउंड क्या है कि कहते हैं कि खुदा के एक रिवायत के मुताबिक, एक ट्रेडिशन के मुताबिक, खुदा के 100 नाम हैं। वो कहते हैं 99 नेम्स हमको मालूम हैं, एक नाम हमको मालूम नहीं है, और जो एक नाम हमको मालूम नहीं है वो सबसे बड़ा नाम है, वो इसमें आज़म है। इसम नाम को कहते हैं, आज़म सबसे बड़े को कहते हैं। तो जो एक नाम नहीं मालूम है वो सबसे बड़ा है, बाकी 99 नेम्स वो हैं जो आपको कुरान में लिखे हुए मिल जाते हैं, किताबों में, जिसमें रहमान, रहीम, मलिक, कुद्दूस, सलाम, मोमिन, मुहैमिन, जब्बार, मुतकब्बिर, बहुत सारे नाम हैं। तो ये 99 नेम्स लोगों को मालूम है, ये एक रिवायत है। एक और रिवायत में ज़्यादा नाम भी हैं। तो इस रिवायत के मुताबिक एक नाम लोगों को नहीं मालूम है, और एक नाम की तलाश में पूरी दुनिया घूम रही है। यानी मुसलमानों को एक बहुत बड़ी फजीलत जो हासिल करनी है वो ये है कि वो एक नाम जो नहीं है वो तलाश करें। और चूंकि रसूल सल्लम ने इशारा फरमा दिया है कि इसमें आज़म है, तो आमतौर पर आपको ज़ाहिरी तफासिर में भी मिल जाएगा कि अल्हय्युल क़य्यूम वो नाम है जो दुनिया को नहीं मालूम है, जो खुदा का सबसे बड़ा नाम है। अलहई का मतलब है जिंदा, और चूंकि ये खुदा का नाम है तो इसका मतलब खाली जिंदा नहीं है, खुद जिंदा है, जिंदा कर देता है। हरिया सो हरिया ने सूखा भी हरिया, यानी उस मौला के पास ये शान है कि वो जिंदा भी करता है। और कय्यूम, कय्यूम यानी वो कायम है, और उसकी वजह से पूरी दुनिया भी कायम है। रूह की दुनिया, कल की दुनिया, जितने मतलब हम कहते हैं जो 18,000 दुनियाओं की बात करते हैं, उसकी जो भी मानी हम निकालते हैं, लेकिन सारी दुनियाएं, रूह और अक्ल की सारी दुनियाएं वो मौला संभाल के बैठा है। वो कायम भी है और उसकी वजह से चीज़ें कायम भी हैं, यानी वो न सिर्फ अपनी जगह पे कायम है बल्कि उसकी वजह से दुनिया कायम है। वो जो हम पढ़ते हैं गिनानों में भी है कि सुतून बगैर का आसमान, ये आसमान किसी सुतून के बगैर खड़ा है। तो मौला खुद बहुत बड़ा सुतून है जिसने आसमान को पकड़ के रखा है। इस माना में सुतून बगैर का आसमान इस माना में है कि वो खुद ही उसका रूहानी सुतून है, और उसके सुतून की वजह से। तो हमारे लिटरेचर में, सूफी लिटरेचर में, मुर्शिद कामिल के लिए एक लफ्ज़ यूज़ करते हैं, एक टर्म यूज़ करते हैं, जान जहान, दुनिया की जान, द सोल ऑफ़ द यूनिवर्स। ये जान जहान वही है जिसको हम नफ्स कुल्ली भी कहते हैं, यानी अगर ये पूरी फिजिकल वर्ल्ड की कोई जान है तो वो जान मुर्शिद कामिल है, वो जान इंसान कामिल है, और हमारे अकीदे के मुताबिक वो ज़माने का इमाम है। तो आयतुल कुर्सी की सबसे बड़ी तारीफ़ ये है कि उसके अंदर एक इसमें आज़म है जिसको लोग ढूंढ रहे हैं, और हमारी नज़र में वो बोलता जिंदा इसमें आज़म ज़माने का इमाम होता है। ज़माने का पैगंबर वो इसमें आज़म होता है, उसके बाद ज़माने का इमाम वो इसमें आज़म होता है। तो इस खुदा के अस्मा दो किस्म के हो गए, एक वो हैं जो खामोश हैं, एक वो हैं जो लफ्ज़ में हैं, और दूसरे वो हैं जो शख्सियत में हैं, जो बोलते हैं। तो खुदा के ये 99 नेम्स खामोश नाम हैं, और इमाम जो अल्हय्युल क़य्यूम है वो खुदा का ज़िंदा और बोलता हुआ नाम है। और यही वजह है कि अगर इमाम इन नामों में से एक नाम हमको दे तो वो इस्मे आज़म कहलाएगा और उस नाम से हमको बरकत हासिल होगी। कोई अगर अपनी तरफ से कोई एक नाम लेके उसको पढ़ने लगे इमाम के इज़न के बगैर, तो उसमें से वो रोशनी शायद ना आए, चूँकि इज़न होता है इस्मे आज़म के लिए, इज़न होता है। मौला हमें इस्मे आज़म दिया, मौला ने कोई भी नाम दिया है खुदा का, उस नाम को पढ़ेंगे, चूँकि ज़िंदा नाम ने दिया है इसलिए वो नाम हमारे लिए काम करेगा। तो ये 99 नेम्स खुदा के बंद खजानों की तरह हैं और इनकी चाबियां सब की सब जिंदा नाम के पास हैं। वो जिंदा नाम अगर आपके लिए खुदा के एक नाम का दरवाज़ा खोल दे तो आपके लिए खुदा का वो नाम काम करने लगेगा। तो इस माना में आयतुल कुर्सी की एक बहुत बड़ी तारीफ़ ये है कि इसमें खुदा का इसम है जिसको लोग तलाश कर रहे हैं। तो अलहय्युल कयूम आपको कुछ तफसीरों में मिलेगा कि अलहय्युल कयूम वो इसम है, लेकिन खाली इसम को जानना काफ़ी नहीं होता है। मुसम्मा कहते हैं उर्दू में, यानी यू नो द नेम बट यू स्टिल डोंट नो द नेम्ड। ये किसका नाम है, हु इज़ नेम्ड, वो नहीं मालूम है। इसको इसम और मुसम्मा कहते हैं, यानी अगर हम कहते हैं कि अरजान एक इसम है तो हमको मालूम है कि नेम्ड वन इज़ दिस यंग बॉय सिटिंग इन फ्रंट ऑफ अस। तो सिर्फ नाम मालूम होना काफ़ी नहीं होता है, नाम से शिनाख्त नहीं हो पाती है। नेम्ड वन जो है उसको भी पहचानना है तो सही शिनाख्त होगी। सिर्फ किसी का नाम जानने से शिनाख्त नहीं होती है, मुकम्मल शिनाख्त नहीं होती है। तो हम खुदा का नाम भी जाने और फिर उसकी उसकी शख्सियत भी जाने कि मुसम्मा कौन है। तो एक एतबार से हर इमाम का नाम अलहय्युल कय्यूम, इसीलिए हम जमात खाने में है हय्यु ज़िंदा कायम पाया। ये दरअसल हय्यु ज़िंदा है, हय्यु ज़िंदा कायम पाया। इसी इसमें आज़म को हम डेली अपनी लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं कि ये इमाम ज़िंदा है और ये इमाम कायम है। ये ज़िंदा है इसलिए हमको ज़िंदा करेगा, इस उम्मीद से हम जमात खाने में दाखिल होते हैं, और ये कायम है इसी की वजह से हमारी हस्ती भी और ये पूरी दुनिया भी कायम है। तो अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल कय्यूम, यानी खुदा के सिवा कोई नहीं है जो अल हय्युल कय्यूम है। यानी कितना सिंपल मैसेज है, कितना सिंपल पैगाम है कि खुदा अल हय्युल कय्यूम है, क्योंकि खुदा के ज़िंदा नाम होते हैं और वो ज़िंदा नाम इमाम है। इसको और भी वजाहत से समझने के लिए, चूंकि हमारी नज़र में पूरा कुरान मौला मुर्तजा अली के फरमाने के मुताबिक पूरा कुरान मौला अली की शान में है, और इमाम मोहम्मद बाकिर सलवातुल्लाह अलैहि का एक कौल है जो हमारे बुज़ुर्गों ने अपनी किताबों में इस्तेमाल किया है। इमाम मोहम्मद बाकिर ने फरमाया, मा कीला फिल्लाही फहुआ फ़ीना व मा कीला फ़ीना फहुआ फ़ी बुलगाई मिन शीअतिना। इसका मतलब है जो कुछ खुदा के बारे में कहा गया है वो हम इमामों के बारे में है। मा कीला फिल्ला फहुआ फ़ीना, जो कुछ खुदा के बारे में कहा गया है वो हम इमामों के बारे में है, और जो कुछ हम इमामों के बारे में कहा गया है वो हमारे मुरीदों में से अव्वल दर्जे के मोमिनीन के लिए। कि अव्वल दर्जे के मोमिनीन कामयाब हो जाएं तो जो सिफात और जो तारीफ़ इमाम की है वो उनकी है, और जो कुछ खुदा की है इमाम ने फरमाया कि वो हमारे लिए है। तो इससे हमें कुरान की कुछ चीज़ें समझना बहुत आसान हो जाती हैं कि फिर जिसकी जिन मौजज़ात की यहाँ खुदा बात कर रहा है वो अल हय्युल कय्यूम में ज़माने के ज़िंदा इमाम में है। और वैसे हर ज़माने का इमाम अल हय्युल कय्यूम है, लेकिन चूंकि हमने डिस्कस किया है कि ज़माना दो हिस्सों में तकसीम होता है, एक वो ज़माना होता है जहाँ नूर को छुपाया जाता है, दुश्मनों से बचाया जाता है, वो आहिस्ता आहिस्ता रोशन हो रहा होता है, इमाम दौरे सत्तर में भी होते हैं, लेकिन एक ज़माना ऐसा होता है जहाँ इमाम का नूर आशिकार होता है। इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह फदाहू अरबाहुना के ज़माने से अब तक आप देखें ये नूर रोशन से रोशन तर होता जा रहा है, और इमाम सुल्तान मोहम्मद शाह ने फरमाया है कि एक दिन ये सूरज की तरह अयान होगा, लोग हमको इस तरह पहचानेंगे जिस तरह लोग सूरज को जानते हैं। तो अब ये नूर इतना रोशन हो चुका है कि अब शायद कोई बहाना नहीं कर सकता है कि हमें मालूम नहीं था कि दुनिया में कोई ऐसा शख्स है जो आले नबी होने का दावा कर रहा है। ये दुनिया वालों को ही मालूम है और हमको ही मालूम है कि अब इमाम जिस शान से जाहिर हो चुका है तो अब ये नूर बढ़ता जाएगा। इमाम का नूर कंप्लीट है मगर दौर के हिसाब से, नेमतों के हिसाब से वो कंप्लीट होता जाता है, और जब मोमिन कंप्लीट होता है इस माना में भी इमाम का नूर कंप्लीट होता है, वरना इमाम का नूर एज सच हमेशा कंप्लीट है। तो इसमें अलहय्युल कय्यूम वैसे हर इमाम का टाइटल है, मगर हो सकता है कि ये जो दौरे कशफ है, ये जो अब नूर के जाहिर होने का दौर है, इसके इमामों पर या इमाम के ख़ानदान के अफराद पर ये टाइटल ज़्यादा सही मानों में आए कि वो ऐसे पावरफुल नेम्स हैं जिसकी वजह से नूर जो है अब आगे से आगे बहुत कंप्लीट होगा। तो ये पहली आयत हो गई, अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुआ अल हय्युल कय्यूम, यानी कोई माबूद नहीं है, वो खुदा है जो अल हय्युल कय्यूम है। ला ताखुजुहु सिनतुं वला नऊम, उसको ना ऊंग आती है ना नींद आती है। ऊंग में थोड़ा सा आदमी ऊंगता है और नींद में मुसलसल सोता है, तो ना ऊंग आती है ना नींद आती है। ये खुदा की एक तारीफ है। फिर जो ये हमारे नज़दीक, चूंकि इमाम मोहम्मद बाकिर का कौल है, यही हमारे नज़दीक ज़माने के इमाम की भी तारीफ़ है, अली मुर्तज़ा की तारीफ़ है। जो पैगंबर और इमाम आराम करते हैं उनके लिए कुरान में एक लफ्ज़ है नुआस, प्रोफेटिक स्लीप। ये आम नींद की तरह नहीं होती है। मतलब ये कितना अजीब तसव्वुर होगा कि एक इंसान जो अभी नफ्स की तारीकी में है, नफ्स के अंधेरे में है, लड़ रहा है, कोशिश कर रहा है कि इबादत के लिए उठे, उसका सोना और इंसान कामिल का सोना एक जैसा हो। वो अपने नफ्स को फतह कर चुका है कब का। तो जो इंसान कामिल का सोना होता है उसको कुरान में नुआस कहा गया है, प्रोफेटिक स्लीप होती है। वो एक सुकून के लिए स्लीप होती है, जैसे वो बज़ाहिर हमको लगता है कि सो रहे हैं मगर बहकीकत जाग रहे होते हैं। तेरा शाह पीर कभी न
कभी ना
सोवे,
सोए।
तुझे सोना क्यों कर बावे रे। तो पीरों ने क्या ऐसे ही बोल दिया इमाम की तारीफ, इसके मानी नहीं थे। पीरों ने तब बोला है जब वाकई आपका इमाम नहीं सोता है। उसका सोना नुआस है, जो औलियाई नींद जिसको कहते हैं। और कुरान में खुदा कुछ मोमिनीन के लिए ये बात करता है कि जब जंग में लोग उन पर उमड़ आए थे और उनको बहुत तकलीफ़ थी, तो खुदा ने उन पर नुआस ये वाली औलियाई नींद तारी कर दी। हर दफ़ा ये ज़ाहरी जंग की बात नहीं होती, जब भी कुरान में बात होती है तो ये बातिनी जंग की, बातिनी जिहाद की भी बात होती है कि जो अपने नफ्स से लड़ता है और उसमें कामयाब हो जाता है उस पर खुदा ऐसी नींद तारी करता है। तो हमारे सोने और मौला के सोने में फ़र्क है। और अगर पीरों ने कहा है कि वो नहीं सोता है तो वो वाकई नहीं सोता है। पीरों के पास सच की इतनी ताकत थी कि उनको सच के अलावा कुछ और बोलने की ज़रूरत ही नहीं थी। तो इस माना में इमाम की एक तारीफ़ है, ला ताखुज़ुहु सिनतुं वला नौम, ना उसको ऊंग आती है और ना ही उसको नींद आती है। मंजल लजी यशफ़ाउ इंदहु इल्ला बि इज़्नी, कौन है जो उसके इज़्न के बगैर, उसकी इजाज़त के बगैर किसी की सिफारिश करे उसके पास। किसकी हिम्मत है? उसके इज़्न के बगैर कोई किसी की सिफारिश नहीं कर सकता है। इसका ऑपोजिट भी सोच के देखें, इसका मतलब जिसके पास इज़्न होगा वो सिफारिश कर सकता होगा। यानी तो खुदा पूछ रहा है ना, कौन है जो मेरे इज़्न के बगैर किसी की सिफारिश करे? इसका मतलब जिसके पास इज़्न है वो सिफारिश करेगा। तो इंसान कामिल, मुर्शिद कामिल चूँकि कामयाब हो जाता है, वो दुनिया भर के लोगों की सिफारिश करता है और दुनिया भर के लोग बहिश्त में दाखिल किए जाते हैं रूहानी तौर पर। वो सिफारिश कर सकता है। हम इस्माइली जमात चूँकि हमें मौला मिले हैं, हम सिफारिश कर सकते हैं कि या मौला कुल आलम को आबाद करना, इंसानियत की मुश्किलात को आसान करना। हम ये दुआ करते हैं तो एक इज़्न के साथ भी कर सकते हैं, क्योंकि हमें ये तालीम दी गई है आप पूरी ह्यूमैनिटी के लिए अच्छा फीलिंग रखें। और कुरान में है इंसानियत के लिए, खुदा इंसानियत को इतनी अहमियत देता है कि किसी ने एक शख्स को कत्ल किया उसने गोया पूरी इंसानियत को कत्ल किया, और जिसने किसी एक शख्स को ज़िंदा किया उसने गोया पूरी इंसानियत को ज़िंदा किया। तो इंसानियत खुदा की नज़र में इतनी इंपॉर्टेंट है। और अब आप देखें मौला की तालीमात ग्लोबल, ह्यूमैनिस्टिक, लार्जर लेवल पर जो है आपको उस तरफ ले जा रही हैं। तो इस माना में आप चूंकि मौला के मुरीद हैं, आप एक माना में आपके पास इज़्न है या आपके पास मौला की शिनाख्त है, तो आप लोगों के लिए दुआएं कर सकते हैं, आलम इंसानियत के लिए दुआ कर सकते हैं। लेकिन आखिरी और कुल्ली माना में ये सिफारिश और दुआ सिर्फ इंसान कामिल कर सकता है, क्योंकि उसके पास इज़्न है और वो ये दुआ कर सकता है। न सिर्फ दुआ करता है बल्कि अमली तौर पर तमाम दुनिया के लोगों को वो पार उतारता है रूहानी तौर पर। ये हमने थोड़ा सा डिस्कस किया है कि रूहानी क़यामत गुजरती है जिसमें दुनिया के तमाम लोग इंसान कामिल में जमा होते हैं और इंसान कामिल उनको लेकर मारिफत के एक मकाम पे जाता है, उन सबको पार उतारता है उन सबको कामयाब करता है। जैसे पीर सदर दिन के लिए है कि 12 करोड़ जीव को पार करके ले गए, अनंत करोड़ को ले गए, तो उस वक्त 12 करोड़ इस्माइली कहाँ थे? आज भी नहीं है 12 करोड़। अनंत करोड़ कहाँ से आए? अगर ये जमात की बात होती तो, ये सिर्फ जमात की बात नहीं थी, पूरी इंसानियत की बात थी। उस वक्त के गिवन टाइम में जो लोगों की आबादी होगी उसकी बात होगी, और इस फिगर के अंदर और भी हिकमतें हो सकती हैं। अगर 12 करोड़ एग्जैक्ट फिगर नहीं है तो अनंत करोड़ में मसला हल है। तो इस माना में कि उसके इज्न के सिवा किसी की सिफारिश कौन कर सकता है? तो इंसान कामिल को हर तरह से इज्न है, और मोमिनीन को उसकी शिनाख्त की वजह से ये मर्तबा हासिल हो सकता है कि वो भी इंसानियत के लिए दुआ करें। यालमु मा बैन अईदीहिम व मा खल्फहुम, वो जानता है जो कुछ के आगे है और जो कुछ के पीछे है। हम इंसान हैं, हमारे सामने मुस्तकबिल में क्या होगा एक दीवार है, माजी में क्या हो गया है ये भी एक दीवार है। हम न इस दीवार को पार जा सकते हैं, न उस दीवार के पार जा सकते हैं, लेकिन इंसान कामिल के लिए माजी का पर्दा भी उठ चुका है, मुस्तकबिल का पर्दा भी उठ चुका है। वो साइकल्स को आर पार देखता है, किस वक्त से किस वक्त तक किस तरह चलेंगे, वो एक बहुत लंबा प्रोग्राम होता है उसके पास। वो अपने साइकिल्स को जानता है, दुनिया पे कैसे अहवाल गुजरेंगे, क्योंकि ना उसके सामने कोई दीवार है ना उसके पीछे कोई दीवार है। वो दोनों दीवारें इंसान कामिल के लिए और आरिफ के लिए, जो कामयाब होता है। हमारे पीरों ने पेशन गोयाँ की हैं ना गिनानों में, कई मरतबा बताया है कि ऐसा होगा मुस्तकबिल में, ऐसा होगा। क्यों कर सकते थे? क्योंकि सामने वाली दीवार उठ चुकी थी, वो ज़माने को उस तरह देख रहे थे, हम नहीं देख पा रहे हैं। तो इस माना में कहा गया या अलमु मा बैना अईदीहिम व मा खल्फहुम, जो कुछ लोगों के आगे है और जो कुछ पीछे गुजर गया खुदा उसको जानता है। वला युहीतुना बिशैइम मिन इल्मिही इल्ला बिमा शाअ, तुम उसके इल्म से सिर्फ उतना ही ले सकोगे जितना वो चाहेगा। उसका इल्म बेकरान है, उसके पास बहुत ज़्यादा इल्म है, मगर तुम उसके इल्म से इतना ही ले सकोगे जितना वो चाहेगा। अब खुदा कब चाहेगा? जब मोमिन खुद चाहेगा। मोमिन की चाहत जितनी बुलंद होती जाएगी, खुदा की चाहत भी ऊपर से ऊपर होती जाएगी। अगर मोमिन की चाहत ही नहीं है इल्म के लिए, तो फिर खुदा की भी कोई चाहत नहीं है कि उसको इल्म मिले। आप अपनी चाहत को बुलंद करते जाएंगे तो मौला और ज़्यादा अपनी चाहत को बढ़ाता जाएगा। लेकिन कानून है कि अभी तुमने जितना भी लिया है उसको हमेशा एक ख़तरा ही समझना, कि उसके इल्म से सिवाय उतना जितना के वो चाहता है उससे ज़्यादा तुम नहीं ले सकते हो। हाँ, लेकिन ये बात है कि अगर मोमिन चाहता है तो मोमिन की चाहत बढ़ती जाती है तो मौला अपने दरवाजे खोलता है, एक के बाद एक दरवाजे खोलता है। कहते हैं इंसान कामिल के 70,000 पर्दे होते हैं, सूफी कहते हैं इंसान कामिल के 70,000 पर्दे होते हैं। इल्म का कोई एक नुक्ता हम समझते हैं तो एक पर्दा खुलता है, दूसरा नुक्ता समझते हैं तो दूसरा पर्दा खुलता है, लेकिन बहुत सारे पर्दे हैं। और इल्म, इसका मतलब है इल्म का सफ़र लंबा है, और इस लंबे सफ़र में हमेशा ये दुआ करनी है कि हमें आगे से आगे मौला बढ़ाता जाए और हम हर दफ़ा एक नई मंजिल का इल्म जो है वो हासिल करें। वसीय कुर्सी युहु समावाती वल अर्ज़, अब ये इस आयत का बहुत अहम टुकड़ा है। उसकी कुर्सी ने आसमानों और ज़मीन को घेर रखा है। हाँ, उससे पहले भी था लहू माफिल समावाती व माफिल अर्ज़, ये एक आयत का टुकड़ा हमने छोड़ दिया। जो कुछ आसमानों में है और जो कुछ ज़मीन में है सब उसी का है। ये जाहिर की भी बात है, ये बातिन की भी बात है। दीन का एक आसमान भी होता है, दीन की एक ज़मीन भी होती है। दीन के आसमान पर फरिश्ते हैं, रूहें हैं, आला मोमिनीन हैं, और पहले रैंक्स होते थे ना इस्माइली तरीके में, मुस्तजीब होता था, माजून होता था, दाई होता था, कि और रैंक्स इल्म के लिहाज से होते थे। अब मौला की तरफ से वो रैंक्स डिक्लेयर्ड नहीं है, लेकिन इतना फरमान तो वाजा है ना कि 313 मोमिन दुनिया में हमेशा होते हैं, और वो ना हो तो दुनिया ना चले। तो ये रैंक्स आसमान पे हैं, कुछ ज़मीन पर हैं। ज़मीन और आसमान में जो कुछ भी है इल्मी तौर पर, रूहानी तौर पर, सब का सब उसी का है, उसी के कंट्रोल में है। तो आला हुदूद हैं या ज़मीनी हुदूद हैं, सब के सब उसी के कंट्रोल में हैं और उसी की वजह से है। फिर ये जो आखिर में कहा गया, उसकी कुर्सी ने पूरी कायनात को घेर लिया है, तो खुदा की कोई जाहिर में कुर्सी नहीं है। खुदा की कुर्सी नफ्से कुल, द यूनिवर्सल सोल, और हमने आया नूर की तशरीह में पढ़ा था कि यूनिवर्सल सोल इमाम की सोल है, इमाम की रूह है, जिसको यूनिवर्सल सोल कहा गया है। तो उसने इस पूरी कायनात को घेर लिया है, इस पूरी कायनात उसके अंदर है। हमने जब आया नूर की तशरीह की थी तो हमने कहा था अल्लाहु नूरु समावाति वल अर्ज़, अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है। तो मैंने आपको मिसाल भी दी थी कि लोहे को आप मिट्टी में रखें या हवा में रखें इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, लेकिन लोहे को आप आग में रखें तो लोहे के अंदर का एक एक पार्टिकल आग बन जाएगा। तो अगर आग इस तरह पेनिट्रेट कर सकता है तो अल्लाह आसमानों और ज़मीन का नूर है तो वो कैसे पेनिट्रेट करता होगा? वो तो आर पार हर पार्टिकल का एक्सटीरियर इंटीरियर सब कुछ नूर होता होगा। तो खुदा का नूर ऐसे आर पार है, इसका मतलब नूर ने हमको घेरा हुआ है। अगर इस कायनात की शक्ल भी गोल है, हम ज़मीन की शक्ल गोल है जानते हैं, अगर इस कायनात की शक्ल भी गोल है तो खुदा यूनिवर्सल सोल इस पूरी कायनात को घेरे हुए हैं। मौलाना ने फरमाया बैतुल ख्याल के फरमान में, इफ़ यू थिंक ऑफ दिस यूनिवर्स ही इज़ अबव दिस यूनिवर्स, इफ़ यू थिंक ऑफ 200 यूनिवर्सेस ही इज़ अबव दोज यूनिवर्सेस, जिस्ट है मौला के फरमान का। तो आप इस कायनात का सोचें, जितनी कायनात हैं, आजकल कहते हैं ना बहुत सारे गैलेक्सीज हैं, बहुत सारे सन्स हैं, तो जितनी भी कायनात का सोचें, यूनिवर्सल सोल इतनी पावरफुल है, उसने सबको घेर के रखा है। और इसकी वजह से कायनात चल रही है, इसीलिए जाने जहान, जहान की जान, यूनिवर्स की जान, हम इसलिए जिंदा हैं कि हमारी एक जान है, लेकिन हमारी जान उसकी वजह से है। पूरी कायनात की भी एक जान है और पूरी कायनात इसी जान से चलती है। फिर नासिर खुसरो अपने एक चैप्टर में लिखते हैं पानी की चक्की। आई डोंट नो आपने इंडिया में आपने कभी इस तरह से देखी हो, पाकिस्तान में हमने भी नहीं देखी थी, लेकिन जो विलेजेस होते थे उधर आटा पीसने के लिए एक चक्की बनाई जाती है और ऊपर से पानी गिराया जाता है जो चक्की को हिलाता है। ये फ्लावर मिल होती है, देसी तौर पर बनाई जाती है, ये अक्सर देहातों में होती है जहाँ पे कोई और मॉडर्न तरीक़ा नहीं होता है। और मैंने पर्सनली देखी कि ऊपर से पानी ऐसे गिराते हैं कि वो चक्की के बड़े पत्थर को घुमाता रहता है पानी, और गेहूं को ऐसे लटकाते हैं कि उसमें गिरता रहता है और पीस पीस के आटा बन के निकलता जाता है। तो पीर नासिर कुछ लोग फरमाते हैं कि कोई नादान शख्स इस पंचक्की में जाए, इसको पंचक्की कहते हैं पानी से चलने वाली चक्की, इस पंचक्की में जाए तो वो समझेगा ये चक्की खुद ब खुद चल रही है, लेकिन दाना आदमी को पता है कि ये पत्थर खुद ब खुद नहीं चल रहा है, इसके पीछे से कोई फोर्स है पानी का जिसकी वजह से ये दुनिया चल रही, ये चक्की चल रही है। तो पीर फरमाते हैं कि इस दुनिया में हर चीज़ रवान दवान है, पौधा उगता है, जानवर ज़िंदगी गुजारता है, इंसान आते जाते हैं, क्या तुम ये समझते हो कि ये सब कुछ खुद ब खुद हो रहा है? इसके पीछे कोई पावर है, वो पानी जिस तरह चक्की को पानी चला रही है, चला रही होते होती है, इसी तरह वो जो कुल्ली रूह है, नफ्से कुल है, वो कायनात को चला रही है। कायनात अस खुद नहीं चल रही है, कायनात को चलाने वाला कोई है जिस तरह पानी की चक्की को पानी चला रहा होता है, लेकिन चक्की के अंदर हमको पानी नज़र नहीं आता है तो हमको लगता है चक्की खुद ब खुद चल रही है। तो ये जो नफ्से कुल है उसके लिए बहुत सारे नाम हैं, उसको हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यानी ओवरऑल आयतुल कुर्सी में मौला के मर्तबे की फजीलत है, उसकी मालिकियत है, सब कुछ वो ओन करता है, उसके इल्म की वसअत है कि वो कितना जानता है, आगे भी जानता है पीछे भी जानता है। यानी ये टॉपिक्स हैं छोटे छोटे जो आयतुल कुर्सी में कवर हुए हैं, और इसके अलावा उसके ज़िंदा होने और दूसरों को ज़िंदा कर देने का जिक्र है, उसके कायम होने और हर चीज़ को कायम रखने का जिक्र है, जो कि अभी हमने कहा कि वो या सब चीज़ों को कैसे पकड़े हुए हैं। कुरान में सूरह फुरकान में सूरह नंबर 25 में आयत 58 है, व तवक्कल अल हय्यिल लज़ी ला यमूत, तू उस अल हय्य को अपना वकील बना जो कभी नहीं मरता है। अल हय्य, चूंकि अब ये मौला का नाम हो गया, इंसान कामिल का नाम हो गया, तू उस अल हय्य को अपना वकील बना जो कभी नहीं मरता है। वो अल हय्य है यानी वो हमेशा ज़िंदा है। आप देखें जामे के बाद जामा है, तो नूर कभी नीस्त व नाबूद नहीं होता है, वो ज़िंदा है। इंसान की हैसियत से जामे बदलते हैं मगर नूर जो है वो ज़िंदा है। और पी नासिर खुसरो फरमाते हैं हर जमान इस्लाम रा ताज़ा कुनद ऑन इमाम इब्न इमाम इब्न इमाम, हर ज़माने में इस्लाम ज़िंदा है, ताज़ा है, इमाम की वजह से, फिर उसके बेटे की वजह से, फिर उसके बेटे की वजह से। तो वो रूह जिंदा है, वो इस माना में वो अल्हई है और दूसरों को भी वो ज़िंदगी देता है, दूसरों को भी बेदार रखता है। तो कहा गया कि तुम उस अल्हई को अपना वकील बनाओ जो खुद कभी नहीं मरता है और तुमको भी ऐसी ज़िंदगी देगा कि तुम कभी नहीं मरोगे। एक हदीस कुदसी है, या बनी आदमा अतिनी अज अलू का मिसली, ए बनी आदम मेरी इताअत करो, मैं तुमको अपने जैसा बनाऊंगा, हयन ला तमूत, ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि तुम कभी नहीं मरोगे, अजीजन ला तजिल, तुमको इतनी इज्जत दूंगा कि तुम कभी जलील नहीं होंगे, गनियन ला तफ्तकिर, इतना गनी बनाऊंगा कि तुम कभी मोहताज नहीं होंगे। ये खुदा का ऐलान है, ए बनी आदम मेरी इताअत करो, सही माना में इताअत करो, मैं तुमको अपने जैसा बनाऊंगा, ऐसी ज़िंदगी दूंगा कि इसके बाद तू कभी नहीं मरेगा, ऐसी इज्जत दूंगा कि फिर तू कभी जलील नहीं होगा, और इतना माल दूंगा जिसमें दुनियावी तौर पे भी मौला की नवाजिश हो लेकिन रूहानी और इल्मी माल दूंगा कि तू कभी मोहताज नहीं होगा, कभी फ़कीर नहीं होगा। तो अगर ये खुदा का वादा है तो इसका लिंक यहाँ से मिलता है, अल्हई खुद ज़िंदा है, ज़िंदा कर देने वाला है। और इसीलिए जो पिछले दिनों में हम तस्बीह पढ़ रहे थे, हसबुनल्ला व निमल वकील, निमल मौला व निमल नसीर, हमारे लिए तो बस अल्लाह काफ़ी है, वही हमारा बेहतरीन वकील है। इस आयत में कहा गया अल्लाही को अपना वकील बना लो, जब हम किसी को वकील बना लेते हैं तो वकील हमारी तरफ से बहुत सारे काम करता है, लेकिन उसको वकील बनाने के लिए कुछ स्ट्रगल है जो शुरू में हमें खुद करनी पड़ती है। यूं तो मौला ओवरऑल सबका वकील है, सबके लिए काम करता है, मगर रूहानी तौर पर हमारे लिए वो वकील बन जाए या मुवक्कल बन जाए उसके लिए पहले उसको ज़िंदा करना है अपने अंदर। तो उस ज़िंदगी के बाद जैसे इया का नअबुदु व इया का नस्तईन, इबादत करो और मदद मांगो, पहले इबादत की जाती है फिर मदद मांगी जाती है, तो वो हमें भी ज़िंदा कर देगा। अभी हम आते हैं उस पर, अल्हय्युल खुदा की कुर्सी पर, जिसको नफ्से कुल्ली कहा गया है। अब नफ्से कुल्ली को कुरान में नफ्से कुल्ली के बहुत सारे नाम हैं, मिसाल के तौर पर सूरह नंबर 4 की आयत नंबर 1, जिसको मौला ने अपने फरामीन और स्पीचेस में भी बहुत इस्तेमाल किया है, खलकक्कुम मिन नफ्सिम वाहिदा, तुम सबको एक जान से पैदा किया गया है, ये मौला ने बहुत इस्तेमाल भी किया है। तो नफ्से वाहिदा, ये भी नफ्से कुल्ली ही का नाम है, यूनिवर्सल सोल का नाम है, हम सब उसी से पैदा हो गए हैं, या वो सूरज है और हम उसी की शुआएं हैं। तो नफ्से वाहिदा मतलब ये, चूँकि कुरान को समझने का एक बहुत अच्छा तरीका ये है, एक मिसाल दी गई है कि जब एक तालाब, एक हौज होता है, अगर आप उसमें एक किनारे में बकेट डालो, बाल्टी डालो, तो आप नोट करना पूरे तालाब का पानी लपक कर उसी बाल्टी में आने लगता है। चलो एक बाल्टी के अंदर छोटा सा ग्लास डालो, आप देखो बाल्टी का पानी ग्लास की तरफ लपकता है। तो बुज़ुर्ग कहते हैं कि जब कुरान का कोई एक टॉपिक आप समझने के लिए निकालते हो तो बाकी सारे टॉपिक्स लपक लपक कर उसी एक टॉपिक के अंदर आ रहे होते हैं, यानी वो टॉपिक्स रिलेटेड होते हैं, कनेक्टेड होते हैं। खुदा इल्म का जिक्र अलग करता है, मारिफत का जिक्र अलग करता है, नूर का जिक्र अलग करता है, हिदायत का जिक्र अलग करता है, इमाम का जिक्र अलग करता है, आखिर में ये सारे टॉपिक्स मिलते हैं। वो एक ही टॉपिक था जिससे उसने मुख्तलिफ टॉपिक्स बनाए ताकि हमको अलग अलग मिसालें दे के समझाए। तो जब हम यूनिवर्सल सोल का टॉपिक लेंगे तो वो कुरान के बहुत सारे टॉपिक्स के साथ कनेक्ट हो जाएगा। तो उसमें से एक दो मिसालें कि नफ्से वाहिदा, तुम सबको एक ही जान से पैदा किया गया है, तो ये भी यूनिवर्सल सोल है। फिर खुदा कुरान में कहता है कि मैं तुमको ऐसी बहिश्त में दाखिल करूंगा जिसका तूलो अर्ज, यानी जिसकी लंबाई और चौड़ाई इस कायनात के बराबर है, यानी इस पूरी कायनात को तुम्हारे लिए बहिश्त बना दूंगा। ये सूरह नंबर 3 की आयत 133 है, इसको हम पढ़ भी लेते हैं एक दफ़ा।
वसारिउ इला मग़फ़िरतिम मिन रब्बिका रब्बिकुम, दौड़ चलो या दौड़ कर चलो उस राह पर जो तुम्हारे रब की बख्शिश और उस जन्नत की तरफ जाती है जिसकी वसअत ज़मीनों और आसमानों जैसी है।
कुरान में आपको लफ्ज़ मिलेंगे सारिउ, भागो, फफिर्रु, दौड़ो, साबिकु, सब पर सबकत ले जाओ, मतलब और किसकी तरफ दौड़ो, जन्नत की तरफ दौड़ो। वसारिउ इला मगफिरति मिर रब्बिकुम व जन्नतिन, अपने रब की मगफिरत की तरफ दौड़ो और जन्नत की तरफ दौड़ो। तो जन्नत कोई फिज़िकल चीज़ नहीं है जहाँ आदमी कदम से दौड़ के जाएगा, ये फ़िक्र से दौड़ के जाना है, ये इबादत से दौड़ के जाना है, और इसमें जल्दी करने का हुक्म है कि जल्दी जल्दी जाओ, सबकत ले जाने की कोशिश करो, भाग के जाओ। तो फ़िक्र के कदम से भागना है, इबादत के कदमों से भागना है। तो खुदा क्या कहता है, उस जन्नत की तरफ जाओ जिसकी ब्रेथ और लेंथ जो है वो इसी यूनिवर्स के बराबर है। तो ऐसी कोई जन्नत कहाँ है, कोई फिजिकल जन्नत ऐसी नहीं हो सकती है। और जिस जन्नत की ब्रेथ और लेंथ इसी यूनिवर्स जितनी है, इसका मतलब ये यूनिवर्सल सोल की बात है कि तुम यूनिवर्सल सोल की तरफ जाने में जल्दी करो, उसको पहचानने में जल्दी करो, उसको समझने में, उसका इल्म हासिल करने में जल्दी करो। तो खुदा की कुर्सी ने आसमान और ज़मीन को घेर के रखा है, इसका मतलब कि यूनिवर्सल सोल ही है जो वो बिहिश्त है जिसकी तरफ भाग के जाना है। और इसका एक और नाम है लोहे महफूज। अगर आपने सुना हो कि कुरान में एक तसव्वुर है गार्डेड टेबलेट, यानी एक ऐसी तख्ती जिस पर खुदा ने अजल से लेकर अबद तक जो भी होने वाला था वो सब लिख लिया है। और कुछ लोग समझते हैं कि वो सचमुच कोई बहुत बड़े बोर्ड की तरह है जहाँ खुदा ने बैठ के सब कुछ लिख दिया कि दुनिया कैसे शुरू होगी, आखिर कहाँ तक होगी। लेकिन हमारे बुज़ुर्गों ने कहा है कि खुदा की कोई भी चीज़ विदाउट सोल एंड इंटेलेक्ट नहीं होती है, खुदा की कोई भी चीज़ बेजान नहीं होती है। अगर खुदा ने कहा है मेरा कलम है तो उसका कलम ज़िंदा है, अगर उसने कहा है मेरी लॉ है यानी मेरी टैबलेट है तो उसकी टैबलेट ज़िंदा है, और वो कोई शख्सियत है। खुदा का कलम रसूल अकरम सल्लम है, खुदा की टैबलेट अली मुर्तज़ा है हमारे बुज़ुर्गों के कहने के मुताबिक। क्योंकि अगर आप एक खामोश टैबलेट पे कुछ लिखेंगे तो खामोश टैबलेट में हर चीज़ तो नहीं हो सकती है, लेकिन खुदा कहता है हर चीज़ लिखी है उधर। तो खामोश टैबलेट में मिसाल के तौर पर मेरे दिल की धड़कन तो नहीं है, मेरी सांस चलने का वो भी नहीं है, एक बच्चे की हरकत, कलकारियाँ, उसका रोना भी नहीं है। हर चीज़ कैसे हो गई, हर चीज़ कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जिसमें रूह भी हो, अक़ल भी हो, और उसमें रूहानी और अकली चीज़ें भी महफूज की जा सकती हैं। तो हमारे नज़दीक लोहे महफूज जो है वो मौला मुर्तज़ा अली की ज़ात है जो कि खुद नफ्से कुल है। तो ये जो जहाँ पर खुदा गार्डेड टेबलेट की बात करता है वो गार्डेड टेबलेट भी यही है। और इसको हम बहुत ही आसान कर दें तो हम एक आयत अपनी दुआ में पढ़ते हैं, वकुल्ला शईन आसैना हुफी इमाम मुबीन, तमाम चीज़ें ज़माने के इमाम में हैं। तो इमाम ही वो नफ्से कुल्ली है जिसका खुदा यहाँ ज़िक्र करता है, वसीया कुर्सी यूह समावाती वल अर्स, उसकी कुर्सी में ज़मीन और आसमान समोए हुए हैं। और फरिश्तों की एक दुआ है, रब्बना वसिअता कुल्ला शईन रहमतं व इल्मा, ए हमारे परवरदिगार तूने अपनी रहमत और अपने इल्म में हर चीज़ को घेर लिया है। तो इमाम की रूह इतनी पावरफुल है, उसकी इंटेलेक्ट इतनी पावरफुल है कि उसने पूरी यूनिवर्स को, और अगर इससे भी ज़्यादा यूनिवर्सेज हैं तो उसने उनको घेर के रखा है। तो हम एक ऐसी बिहिश्त में रहते हैं। तो इस माना में आप देखें आयतुल कुर्सी कितनी पावरफुल आयत है, इसमें खुदा के ज़िंदा इसम का नाम है, खुदा के ज़िंदा इसम की तरफ इशारा है। और वो इसम जिसको लोग ढूंढते हैं, हमारे पास, हमको बाय बर्थ मौला ने वो नवाजिश दी है, लोगों को समझने की ज़रूरत है, स्ट्रगल करने की ज़रूरत है, मगर हमको पका पकाया दीन मिला है जिसमें इमाम जो है वो ज़िंदा इस्म है। वरना तो ये कैसे समझ में आएगा। आप देखें जो लोग खुदा के 100 नाम लिखते हैं, कभी कभी अल्लाह के नाम के साथ एक खाना जो है वो खाली होता है, कहते हैं ये खुदा का वो 100वां नाम है जो हमको नहीं मालूम है। लेकिन हमको वो नाम न सिर्फ मालूम है बल्कि दीन और दुनिया की बरकतें, रहमतें उस नाम से हमको हासिल होती हैं। और खुदा खुदा की अगर हर चीज़ ज़िंदा है तो उसका नाम भी ज़िंदा होना चाहिए, उसका सबसे बड़ा नाम ज़िंदा हो। और आप किसी आदमी को किस तरह बुलाएंगे, उसके नाम से बुलाएंगे ना। अगर इमाम खुदा का नाम है तो आप खुदा को उसके नाम से बुलाएंगे ना। इमाम खुदा का नाम है तो आपको खुदा को बुलाना है तो आप खुदा को खुदा के नाम से बुलाएंगे, यानी आप इमाम के नाम से बुलाएंगे। तो ये एक लॉजिक बनती है कि इमाम खुदा का सबसे बड़ा नाम है, ज़िंदा नाम है, और आसमानों और ज़मीनों में जो कुछ है उसका कंट्रोल है। आयतुल कुर्सी को पढ़ने की तालीम दी गई है चूँकि इसमें खुदा के सबसे बड़े इसम की तरफ इशारा है। और बुज़ुर्ग बताते हैं कि इस आयत के पढ़ने से आपकी हिफाजत होती है, आप पर एक मौकल होता है, और इससे एक रोब भी आता है। दीन के रास्ते में जब हम एंटर होते हैं ना, तो रूहानियत का एक दरवाज़ा भी खुलना होता है, उसका एक प्रेशर भी होता है, और इस आयत के मुसलसल पढ़ने से वो प्रेशर भी डेवलप होता है। तो एक समझने की बात है, प्रैक्टिस करने की बात है। कभी आप ऐसा एतिकाफ़ कर सकते हैं कि 3 दिन आप आयतुल कुर्सी का बहुत ज़्यादा विर्द करके देखें, आपके दिल में कैसी खुशी, कैसा सुरूर, कैसी समझ आती है। लेकिन फिर इमाम के ज़िंदा नाम की ये चीज़ें गिनानों में, फरामीन में मिल जाती हैं कि यही खुदा का ज़िंदा नाम है और इसकी कुर्सी के अंदर तमाम चीज़ें, कुर्सी मिसाल के तौर पर इस्तेमाल किया गया, लेकिन उसने सब चीज़ों को घेर लिया है। और अगर ये कुर्सी है, उसके ऊपर तख्त है, तो वो बैठा हुआ है उस तख्त पे। यही तसव्वुर है ना, कुर्सी पे इमाम बराजमान है। तो जब इमाम जाहिर दरबार में आता है और तख्त पर बैठता है, तो हमें इस आयतुल कुर्सी का ज़रूर सोचना चाहिए कि वो पूरी कायनात के ऊपर एक तख्त है, उसके ऊपर बैठा हुआ है, और पूरी उसकी बादशाही जो है वो पूरे कायनात के लिए है। मौला अली का एक कौल है, अना मलिक इब्ने मलिक, मैं बादशाह हूँ, बादशाह का बेटा बादशाह हूँ। ज़ाहिर है उसके बाद उसका बेटा बादशाह होगा, उसके बाद उसका बेटा बादशाह होगा, तो वो बादशाह। बल्कि मैंने आपसे कहा कि इससे भी बढ़कर एक लफ्ज़ है मलिक, यानी शहनशाह, दूसरों को बादशाह बनाने वाला। तो इस माना में आयतुल कुर्सी की थोड़ी सी ये डिटेल थी।